हमने जैसा कि सिलसिले का आगाज़ किया था कि कुछ तफसीर कुरान के हवाले से बात हो, और तफसीर ऐसी के जिसमें हम कुरान के मतालब और मानी को ज़्यादा बेहतर तरीके से कुछ गहराइयों में जाकर, और जो हमारे बुज़ुर्ग उलमा हैं उन्होंने जिस तरीके से उसको बयान किया है तफसीर कुरान को, उसकी रोशनी में समझने की कोशिश करें। क्योंकि मुसलमानों के लिए कुरान करीम सबसे ज़्यादा गलत समझे जाने वाली किताब, जिस किताब को मुसलमान सबसे ज़्यादा गलत समझते हैं और उसके मैसेज से बिल्कुल आगे ही नहीं रखते, वो खुद ये किताब हकीम। तो हमारी कोशिश सिर्फ ये है कि क्योंकि अब खुदा के फजलो करम से उलमा के जो तहकीकी काम है, तफसीरी काम है, वो अब हमारे हाथों में है, तो उससे हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। बुनियादी तौर पर ये एक नीयत और इरादा है इंशाअल्लाह। पिछली दफ़ा मैंने बात जहाँ से शुरू की थी और आज भी उसको कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ, वो ये कि कुरान करीम को समझने से पहले या उसकी तफसीर से करीब होने के कुछ मुकदमात हैं। मुकदमा यानी कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं। अगर उन बातों का ख्याल नहीं रखा जाए तो इंसान कुरान से इस्तेफादा या फ़ायदा नहीं उठा सकता। और मैंने आप लोगों को जो एक दो पर्चे भी, दो पेजेस भी लिख के भेजे थे, उसमें खुलासा, उसमें मैंने यही बात आपके सामने रखी कि खुदा ने अपने आप को नूर की हैसियत से मुतारिफ कराया, अल्लाह नूरुस समावात वल अर्द। और नूर की तारीफ मैंने आपकी खिदमत में बयान की थी कि क्या है। इसमें सबसे खास बात यह है कि अल्लाह नूर है, और हर वो शय जो खुदा से मुताल्लिक है उसमें भी ये नूरानी सिफत और कैफियत पाई जाती है। हर वो शय जो खुदा ने नाजिल की, हर वो शय जिसे खुदा ने अपना कहा, जिसकी नस्बत खुदा ने अपनी ज़ात की तरफ दी, उसमें सबसे अहम कौन सी कैफियत पाई जाती है? नूरानियत वाली पाई जाती है कैफियत। ठीक है, तो इस लिहाज से अहले बैत नूर हैं, अम्बिया अलैहिस्सलाम नूर हैं, कुरान नूर है, औलिया खुदा नूर हैं। और नूर की क्या कैफियत है वो मैंने बयान कर दिया था, अब उसको दोहराना फिर फायदा नहीं उसका।
अगर भाई मुख्तसर दूसरे अगर
जी चले, नूर जो है बुनियादी तौर पर उसकी तारीफ ये है कि जो शय बजात खुद आया हो, रोशन हो, जाहिर हो, यानी अपने आप को जाहिर करने के लिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए या अपने को मैनिफेस्ट करने के लिए, उसे किसी दूसरे की एहतियाज की ज़रूरत नहीं है, दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। और उसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि जिस चीज़ के साथ वो कनेक्ट होगा उसे भी रोशन कर देगा। ये बुनियादी तौर पर नूर की तारीफ। तो अल्लाह नूरुस समावात वल अर्द, यानी आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है वो खुदा की वजह से उसकी शनाख्त है, उसकी हैसियत है। तो उन सब चीज़ों को रोशन करने वाली हकीकत असल में अल्लाह है। और फिर उसके बाद अल्लाह ने अपने बारगाह से जिन जिन हस्तियों हकीकतों को नाजिल किया उनमें यही सिफत पाई जाती है। यानी जिस तरीके से अंबिया अलैहिस्सलाम इंसान के अंदर जो वजूद की तारीकी है उसको नूरानी करने वाले हैं, इंसान की जुल्मत को नूर से बदलने वाले हैं। ठीक है, और ये चीज़ यानी आज मैं थोड़ा सा इस बात को और आगे बढ़ाना चाहूँगा, और इसमें एक जो अहम तरीन नुक्ता है जो आज हमें जिसको एम्फेसाइज करना है वो ये कि हमारी पैदाइश का या खुदा के दीन नाजिल करने का मकसद क्या है हमारी ज़िंदगी का। थोड़ा सा आप लोग पहले इस पे कंट्रीब्यूट करें, फिर मैं कुरान की आयतों की रोशनी से इस पे कुछ वजाहत करता हूँ।
वो जो बचपन से सुन रहा है कि नहीं है मकसद
नहीं,
हमारी
मतलब
जिंदगी का,
जहाँ तक पहुँचा है बाप के जहन, जहाँ तक पहुँचा है कि हमारी पैदाइश का, इंसानियत के खल्क करने का क्या मकसद है। यानी जी अभी जो मैंने आपके सामने बात की यही मकसद है कि इंसानियत नूरानी हो जाए। सही है, इंसानियत के खल्क करने का मकसद क्या है कि इंसानियत नूरानी हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम रा, ये सूरह इब्राहिम की पहली आयत है। मैं एक तिलक आयातुल किताब, मैं पढ़ देता हूँ, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रही। सूरह इब्राहिम की पहली आयत है, शुरू यहीं से होती है, 14। चौदवा सूरा, उसका पहला अलिफ राम रा, किताबुन अनजलनाहु इलैका, कि किताब जिसे हमने नाजिल किया तेरी तरफ, लितुखरिजन नासा मिन अज़्ज़ुलुमाति इलन नूर बिइज़्नि रब्बिहिम, कि किताब नाजिल करने का मकसद, पैगंबर की बेसत का मकसद क्या है? लितुखरिजन नासा, ताकि तू इंसानों को निकाले,
वाह
यानी कि ये मकसद खुदा का किसके लिए? कुल इंसानियत के लिए, किसी मखसूस ग्रोह के लिए नहीं है। क्या आप कहेंगे खुदा सिर्फ मोमिनीन के लिए चाह रहा है, या शियों के लिए चाह रहा है, या फलां के लिए चाह रहा है? ये नहीं चाह रहा, किसके लिए चाह रहा है? कि किताब जो खुदा ने नाजिल की रसूल की तरफ, इलैका मुखातिब पैगंबर है, तेरी तरफ, किस लिए? ला, यानी अरबी जबान में ये जो प्रिपोजिशन हैं ला बा, ये इनके हर्फ ये कुछ बता रहे होते हैं। तो ला जो है यहाँ पर, ला में गायत है, गायत मतलब पर्पस को शो करता है, कि हमने नाजिल की किताब तेरी तरफ ला किस लिए, किस मकसद के? तुखरिजन नास, के तू निकाले इंसानों को, इंसानियत को, मिन अज़्ज़ुलुमात, तारीकियों में से, इलन नूर, नूर की तरफ, बिइज़्न रब्बिहिम, उनके रब के इज़्न से। तो मकसद जो है हमारा या इंसानियत का, ये नहीं है कि हम जन्नत में चले जाएं या उन नेमतों से, यानी कि बाज़ वक़्त उलमा कहते हैं कि हमें इस किस्म का मुसलमान बना दिया गया है कि टेम्पररी मज़ों को छोड़ के वही मज़े परमानेंट हासिल करने के लिए काम करते हैं, है ना? यानी कि ये लज्जतें मज़े हैं, हमसे कहा गया कि ये थोड़े दिन में ख़त्म हो जाएंगे, ये टेम्प्रेरी हैं, आर्जी हैं, यही मज़े दायमी करना है तो नमाज पढ़ लो, रोज़ा रख लो, ये कर लो, ये कर लो। नहीं, ये पतन, यानी इवन अगर जन्नत भी है तो ये दरमियान, जैसे कहते हैं वस्त राह में, इन द मिडल ऑफ द जर्नी है, नॉट द एंड ऑफ द जर्नी। तो असल मकसद क्या है? यानी कि इंसानियत के लिए खुदा मकसद क्या बयान कर रहा है दीन नाजिल करने का, किताब का, पैगंबर को भेजने का, कि तुम इंसानों को तुम निकालो, मिनज़्ज़ुलुमात, तारीकियों से, इलन नूर, नूर की तरफ। यहां मैं एक चीज और थोड़ी सी इसकी वजाहत कर दूं, ये भी बहुत बहुत अहम नुक्ता है। कुरान करीम में जो भी हकीकत दीनी है, जो इलाही हकायक हैं, उसको ताबीर किया गया है नूर से, और हर वो चीज़ जो इंसान को उस नूरानियत से अलहदा कर दे, उसको ताबीर किया गया है जुल्मत से। लेकिन ज़्यादातर मकामात पर जुल्मत जमा में है और नूर वाहिद में। कुरान में कहीं भी नूर जमा में नहीं आया है, प्लूरल, अनवार नहीं है, अनवार नहीं है, जुल्मात, जुल्मत की जमा है जुल्मात, कसरतें। जैसे आयतुल कुर्सी में भी आप क्या पढ़ते हैं? अल्लाह वलीयुल लजीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। अल्लाह वली है, सरपरस्त है अहले ईमान का, और उन्हें निकालता है जुलुमात में से नूर की तरफ। तो ये कुरान हमें यह सिखा रहा है कि गुमराही के रास्ते 10,000 हैं, लेकिन हकीकत वाहिद, और जो हकीकत वाहिद है वही नूर है, और उसी की तरफ पेशकदमी करना, उसी की तरफ आगे बढ़ना, उस तक पहुंचना, उसको पा लेना, खुद नूरानी हो जाना, यह है इंसानियत की पैदाइश का मकसद। ठीक है, ये एक बहुत अहम बात जो हमारे जहन में रहना चाहिए कि खुदा ने हमें क्यों पैदा किया। और ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपके सामने खुद कुरान करीम से ही रखूंगा, यानी ऐसा नहीं कि एक वेग नज़रिया हम बयान कर रहे हैं। کہ سورہ ابراہیم کی پہلی آیت کتاب کے نزول کا مقصد، پیغمبر کی آمد کا مقصد فقط اور فقط یہ ہے کہ انسانیت کو تاریکیوں سے نکال کر نور الہی کی طرف لے جایا جائے، انسانیت کو نورانی بنا دیا جائے، نور والی صفت یعنی خدائی صفات اس کے اندر پیدا کرا دی جائیں۔ اچھا، اس گفتگو میں ابھی اعجاز بھائی بھی یہ بات کر رہے تھے کہ آپ لوگوں کے سوال پر کوئی پابندی نہیں ہے، یعنی وہ اچھا نہیں ہے کہ پہلے ایک بہت لمبی تقریر ہو، اس میں بہت سارے پوائنٹس مس ہوں، پھر آخر میں آپ سوال کریں، بیچ میں کوئی بھی بات سمجھ میں نہ آئے آپ پوچھ سکتے ہیں یا ڈسکس کر سکتے ہیں، وہ اس پہ کوئی ایسی پابندی نہیں ہے۔ تو آج میں جو آپ کے سامنے، یعنی کہ ایک چیز ہم نے یہ بیان کی کہ قرآن نور ہے، حقائق الہیہ نور ہیں، انسانیت کا سفر ظلمات سے نور کا سفر ہے، تو جب نور کی بات آتی ہے تو نورانی ہونے کے لیے جو شرط ہے وہ کیا ہے؟ نورانی ہونے کی شرط کیا ہے؟ پردوں کا ہٹنا۔ اس کے لیے یہ شرط نہیں کہ آپ بہت زیادہ کتابیں پڑھے ہوئے ہوں، اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ آپ نے بہت زیادہ عبادتیں کی بھی ہوں۔ یعنی اگر آپ اس جگہ کو نورانی کرنا چاہتے ہیں تو جس پردوں نے اس کو گھیرا ہوا ہے وہ ہٹا دیجئے، جگہ خود بخود نورانی ہو جائے گی۔ اگر اس کو تاریک کرنا چاہتے ہیں اس کو پردوں میں گھیر دیں۔ یہ سمپل فارمولا ہے۔ جتنی بھی چیزیں سکھائی گئی ہیں، جتنی بھی چیزیں سکھائی گئی ہیں، ان سب کا مقصد صرف ایک ہے کہ انسانی نفس پر، انسانی عقل پر پڑے ہوئے پردوں کو ہٹایا جائے، پھاڑا جائے، چاک کیا جائے، برطرف کیا جائے۔ تو جب آپ اس مقصد کو سمجھتے ہیں تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کی اور ہماری نماز ان پردوں کو چاک کرنے کا سبب نہیں بن رہی ہے تو وہ نماز کچھ بھی ہو سکتی ہے، نماز نہیں ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ منیمم نماز کا مقصد ہے۔ نماز کا منیمم رزلٹ کیا ہونا چاہیے؟ کہ وہ فحشاء اور منکرات سے انسان کو الگ کر دے۔ لیکن آیت یہاں پہ رکتی نہیں ہے، ولا ذکر اللہ اکبر، اور ذکر الہی خدا کی یاد اکبر ہے۔ یعنی نماز در حقیقت انسان کو ایسی بنائے کہ انسان کے قلب سے کسی بھی لمحے میں خدا کی یاد رخصت نہ ہو۔ ذکر یاد کو کہتے ہیں، ذکر زبان سے دعا پڑھنے کو نہیں کہتے۔ ذکر جو ہے، ذکر کا مطلب ہے یاد آوری، ٹو ریممبر، ریممبرنس۔ ذکر زبان سے کچھ پڑھنے کا نام نہیں ہے، وہ بات پھیلتی جائے گی۔ یہ بھی انشاءاللہ قرآن کی آیتوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، وہ پھر کبھی بتاؤں گا۔ لیکن ذکر ہے یاد، والا ذکر اللہ اکبر، کہ نماز کا حقیقی مقصد کیا ہے؟ کہ انسان، بندہ یاد خدا پر آ جائے، یعنی خدا کی یاد کبھی اس سے جدا نہ ہو۔ یہ صلات کا اصل مقصد ہے، اور اس کا منیمم پرپس کیا ہے؟ منیمم جو بینیفٹ ملنا چاہیے کہ فحشاء اور منکرات سے دوری۔ تو یہ فارمولا یاد رکھیے گا، یہ بہت ہی قیمتی نسخہ ہے کہ میرا اور آپ کا، پوری انسانیت کی پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ ہم نورانی ہو جائیں۔ نورانی کیسے ہوں گے؟ ہر شے نورانی ہوتی ہے خدا کی صفات سے۔ اہل بیت علیہ السلام کیوں نورانی ہے؟ اس لیے کہ ان کے وجود میں خدا کی صفات جھلکتی ہیں۔ جس میں خدا کی صفات جتنی زیادہ نمودار ہوں گی، نظر آئیں گی، اتنا ہی زیادہ وہ نورانی ہے۔ کہ جیسے علی علیہ السلام کے لیے جو بات آئی گئی، عین اللہ اور ید اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر خدائی صفات اتنی زیادہ جڑ پکڑ چکی ہیں کہ ان کی آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے وہ سوائے مرضی خدا کے کچھ نہیں ہوتا، اور ہاتھ جو کچھ کرتے ہیں وہ رضا الہی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ یہ نورانیت ہے۔ دیکھیے، تو ہم سب کی پیدائش کا مقصد ہے کہ نورانی ہو جائیں، اور نورانی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پردے ہٹیں۔ تو اصل چیز پردوں کا ہٹانا ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے۔
भाई एक
जी
क्वेश्चन जो मैं कर लूँ,
जी
जो जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि जो अहले बैत अलैहिस्सलाम है वो कोई एक मुख्तलिफ मखलूक है,
ये पर बात कहीं से कहीं पहुंचेगी,
अरे
यानी कि इसकी कोई ताईद होती नहीं है कुरान करीम से। मुख्तसर एक जुमले में जवाब दे दूं कि इस किस्म के किसी नज़रिए की ताईद कुरान से होती नहीं है, और उसकी अक्ली और लॉजिकल वजह यह है कि खुदा अगर किसी और मखलूक को हमारे लिए हिदायत का सबब बना के भेजेगा तो वो हमारे लिए हुज्जत नहीं होगा उसका अमल। अक्ली वजह, अक्ली दलील ये है कि अगर वो कोई और मखलूक है तो उनका अमल मेरे लिए हुज्जत नहीं है, मैं उसकी पैरवी कैसे करूं कि वो कुछ और है हम कुछ और हैं।
नहीं, मैं नूर के हवाले से
और
बात कर रहा था कि ये नूर कोई अलग मखलूक है, हम खाक
नहीं,
तो ये
नूर के हवाले से नहीं, इसका इसकी बहस बहरहाल कुछ और है, लेकिन लेकिन ये जो है कि इसमें वो जो भी है लेकिन वो ऐसे हैं कि हमारे लिए लायक पैरवी हैं, मुख्तसर बात ये। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट नूर का जो कंसेप्ट है, और नूरानियत यानी सिफात खुदा, कि जिस बंदे में जितनी ज़्यादा सिफत रहीमियत है, रहमानियत है, कुदरत है, कुव्वत है, उतना ही ज़्यादा उसका नफ्स नूरानी है।
वहाँ पर एक सवाल है अगर भाई, कि जब मतलब आपने कहा कि खुदा का मकसद ये था कि उसको इंसानियत को नौरानियत की तरफ लेकर आए, उसे अपनी तरफ लेकर आए, लेकिन खुदा ने कुरान में खुद ही इरशाद फरमाया कि तुम में से चंद लोग होंगे जो ईमान लाएंगे, और तुम लोगों की अक्सरियत जो है, इंसानों की अक्सरियत वो जहन्नुम में जाने वाली है। तो ये कुरान का स्टेटमेंट है या ये इंसान, चूंकि इल्म खुदा ये है कि इंसान नहीं पहुंच पाएगा उस नूर तक,
देखिए
कि
इसमें
जो
आयत भी यही कह रही है ना, लितुख्रिजन नासा मिनज़्ज़ुलुमात इलन नूर, इसका मतलब है कि उमूम इंसानियत बाय डिफॉल्ट जुलुमात में है, यानी जो इंसानियत है, और ये चीज़ खुद कुरान करीम में है भी कि लकद खलकना लिंसाना फी अहसन तकवीम, के बेशक हमने इंसान को खल्क किया बेहतरीन फार्मूले पर, इंसान का फॉर्मूला और कंपोजिशन ऑफ क्रिएशन जो है बेहतरीन है। सुम्मा रददना हो असफला साफिलीन, लेकिन बेहतरीन फॉर्मूले पर खल करने के बाद उसे सबसे निचले मकाम में उतार दिया, यानी उसका सफ़र, उसकी आजमाइश, आजमाइश कह लीजिए, बला कह लीजिए, उसकी आजमाइश के लिए वो असफले साफिलीन में उतार दिया गया, तारीखियों में उतार दिया गया, यानी हमने एक ऐसे आलम में आंखें खोली हैं कि जो बिल्कुल तारीक है, यानी जिसके और नूर खुदा के दरमियान मैक्सिमम पॉसिबल हिजाबात हैं, उससे निकलने का तरीका क्या है, उसके लिए खुदा ने हमें एक फितरत दी है कि जो हमें बेचैन करती है और हमें हमें पिंच करती है कि हकीकत ये नहीं है जो नज़र आ रही है,
इसी बुनियाद पर अशरफ المخلوقات बने।
उस चीज़ को अगर हमने डेवलप किया, अभी इंशाल्लाह मैं उससे बात करता हूँ, तो हम ऊपर जा सकते हैं, लेकिन अगर अपनी फितरत के नूर को खामोश कर दिया, ख़त्म।
इंसानियत की अक्सरियत तो वही है ना, खत्म
हाँ
हो
हाँ
जाएगा।
प्रैक्टिकली ऐसा ही है, प्रैक्टिकली
यानी
ऐसा ही
कि
है।
जो खुदा का मतलब कलाम है, खुदा ने कहा कि नूर की तरफ इंसानियत को लेकर आए, तो वो तो पूरा होता नजर नहीं आ रहा है, इंसानियत तो उस नूर की तरफ नहीं जा पा रही।
देखें इसमें अब फिर वही के बाद फिर कहीं से कहीं
नहीं,
पहुंचेगी।
मैं इसी इसी रेफरेंस
हाँ,
से बात कर रहा हूँ
यानी कि
आपकी।
अभी अभी जो चीज़ है, इब्तिदा में इस तरीके से नज़र आ रहा है कि हर दौर में, हर नस्ल में, हर जगह कुछ लोग हैं जो इसको समझ पाते हैं, और वो इंसानियत का माहसल है और निचोड़ है। यानी जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप खाना खाते हैं कि आप जिंदा रहें, यानी कि जो कुछ मैंने और आपने खाया, हम कहते हैं कि ये मेरी ज़िंदगी का सबब है, लेकिन अगर उसमें से कोई कहे कि इसमें से बहुत थोड़ा सा है जो आपकी ज़िंदगी का सबब बनता है, ज़्यादा तो फजलेम की शक्ल में निकल जाता है, तो यह है एक लॉ ऑफ नेचर। इसी तरीके से आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग करने में आप बाज़ोकात 30, 40, 50% वेस्ट करते हैं, वो भी आपके प्रोसेस का हिस्सा है। अगर वो वेस्टेज नहीं होगी तो वो चीज़ ही नहीं बनेगी,
प्रोडक्शन नहीं हो
यानी कि जो कुछ आप बनाना चाह रहे हैं, जो आपका महसूल है, एंड प्रोडक्ट है, बगैर वेस्टेज के आप नहीं पहुंचेंगे वहां तक। एक तो ये बात है कि जो अभी हमें नजर आ रही है कि अभी इंसानियत इस तरीके से चल रही है
जो
कि
है
कुछ
मैक्सिमम
एंड
लेवल
प्रोडक्ट को लाने के लिए
मैक्सिमम
अच्छी
लेवल पे
खासी
एक्चुअल पे जो
वेस्टेज हो रही,
चल रही
लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि जब ये चीज खत्म हो जाएगी।
है, प्योरिटी रहती है
हाँ, ये नहीं कि ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, यूँ समझ लीजिए कि जो इंसानों के जो प्रोसेसिंग है वो चीज़ एडवांस होती चली जाएगी, और उसी का जो मेन एक चेंज आएगा वो ज़हूर इमाम है, उसी में ही तब्दीली आएगी कि वो जो इतनी ज़्यादा वेस्टेज हो रही है ना वो बहुत हद तक ख़त्म हो जाएगी। और इमाम से पहले जो चीज़ हो रही है वो यही हो रही है, हत्ता यमीज़ल खबीसा मिन अत्तय्यिब, कि खुदा ऐसा नहीं है कि तुम जिस हालत में हो उसमें तुमको छोड़ दे। शायद ये सूरह अनफाल है। खुदा ऐसा नहीं है कि जिस हालत में तुम सब अभी हो इसमें तुमको छोड़ दे, यहां तक कि वो मुमय्यज़ कर ले, अलहदा अलहदा कर ले किसको, खबीस को तैयब से। तो ये अभी वो प्रोसेस चल रहा है। आप अभी गौर करें कि इस किस्म का निज़ाम बन गया है कि जब किसी भी किस्म की बुराई और खराबी पर कोई रोक टोक नहीं है, तो इस दौर में जो भी नेक और अच्छा इंसान होगा वो जेन्युइन अच्छा होगा, वो सारी बुराइयों से सारी खराबियों से लड़ के अच्छा होगा। वो ना आप किसी घर में पैदा होने की वजह से अच्छा होगा, ना किसी के बेटा होने की वजह से अच्छा होगा, ना किसी कौम कबीले की वजह से अच्छा होगा, वो अपनी खूबी की वजह से अच्छा होगा। यानी ये बजाते खुद इमाम अलैहिस्सलाम के जहूर की एक बहुत बड़ी अलामत है। छठे इमाम का कौल है, ये कौल मैंने शहीद मुताहरी की किताब में पढ़ा है, बाकी कभी भी सुना ही नहीं जाता ये कौल, कि हमारे कायम के जहूर की अलामत ये है कि जब अच्छे लोग बहुत अच्छे और बुरे लोग बहुत बुरे हो जाएंगे।
दरमियान में कोई स्केल
हाँ, पोलराइजेशन ऑफ ह्यूमैनिटी, हत्ता यमीज़ल खबीसा मिन तय्यिब, कि खुदा इस तरीके से इंसानियत को चला रहा है, पहले तो वही जो वेस्ट है लेकिन अब इस तरीके से चल रहा है कि अब प्योर इम्प्योर अलग हो जाएगा, और फिर उसके बाद सबको, ये भी कुरान की आयत है कि सबको एक के ऊपर एक रख के जितना भी खबीस है उसको जहन्नम में झोंक दिया जाएगा, और जो तय्यब है उसको जिंदगी के अगले मरहले तक पहुंचा दिया जाएगा। जी, तो ये नहीं कि ये ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल एंड तक पहुंचे हैं, बल्कि हम एक फेज ऑफ ह्यूमैनिटी से गुजर रहे हैं और उसका अगला फेज इंशाल्लाह ये ज़हूर इमाम है। नेक्स्ट फेज जो है वो इमाम का ज़हूर है, जिसमें ये सारी तब्दीलियां आ जाएंगी। जी जी जी
जो जनरेशन गुजर गए
जी
इमाम के जरूर से पहले, वो लोग तो उसी पीरियड में गुजर गए ना कि वर्ल्ड द बेस्ट, तो इमाम के आने के बाद तो सही है, चीजें जो है बहुत ज्यादा वाजिब हो जाएंगी और लोग जो है बहुत ज्यादा प्योर हो जाएंगे, लेकिन वो जो दरमियान के 1400-1500 या 2000 या वट एवर पीरियड ऑफ टाइम में जो लोग गुजर गए हैं उनका क्या होगा?
नहीं, रजत इसीलिए तो है, रजत का कंसेप्ट है ना हमारे पास,
ध्यान का
और जिसे
कंसेप्ट
कहें मुसल्लमात शिया में से है, ये लोगों को बहुत अजीब लगता है लेकिन ये मुसल्लमात शिया में से है कि लोग पलटेंगे वापस, यानी कि उस दौर में लोग वापस लौटेंगे। या तो ये है कि जो गुजर गया इस दौर में अगर उसने अपने कमाल को पा लिया तो ठीक है, वो निकल गया आगे,
मसला
लेकिन अगर हालात की वजह से, अगर हालात की वजह से या माहौल की खराबी की वजह से उसकी प्योर होने में कोई कमी रह गई थी तो खुदा उसे लौटाएगा। हाँ, बिल्कुल। यानी इस चीज पर बहुत ज्यादा एतराज किया जाता है, लेकिन रजत का कंसेप्ट जो है हमारे तशय्यों के अंदर बिल्कुल मुसल्लम है, इसमें कोई शक नहीं है, और आइम्मा की रजत के हवाले से तो बिल्कुल मुस्तकिलन रिवायात है। जी
नहीं,
मुसल्लमात है। अच्छा, और इसमें बात जो है वो यही है, यानी कि ये समझ में आने वाली बात है कि मैं एक शर्त पूरी कर रहा हूँ एक जगह तक पहुँचने की, लेकिन एग्जिस्टिंग कंडीशंस की वजह से वहां तक नहीं पहुंच पाया। यानी जैसे मेरा जहन इस बारे में बहुत सोचता था शहीद आरिफ के बारे में कि एक क्वालिटी पर्सन है, लेकिन माहौल की वजह से और लोगों के इर्द गिर्द के लोगों की खराबी की वजह से उसकी लाइफ एब्रप्टली एंड हो गई, है ना। यानी कि ये बात बहुत मेरे दिमाग में है कि ये इसका मतलब है कि उस शख्स के कमाल तक पहुंचने का रास्ता रुक गया, तो ये तो अदले इलाही के खिलाफ बात हो गई। तो लाजमन खुदा को उसे मौका देना चाहिए।
वो कमाल उस जगह पे जारी नहीं रहेगा वो कमाल।
देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो आपको सिर्फ इसी जिंदगी में ही आप हासिल कर सकते हैं। इस पर हमने बहस की थी ना कि जो कमाल के कुछ पहलू ऐसे हैं कि जो सिर्फ इस जिस्म मादी में ही हासिल हो सकते हैं, इसीलिए हम सब यहाँ पर पाए जाते हैं।
तो जो बुरे लोग हैं उनका भी रजत होगी, बहुत
बुरे
ज्यादा
लोगों
बुरे, उम्र
की रजत के
भी
कुछ
होगी,
हैं, कुछ कुछ हैं,
उम्र भी
लेकिन
है रजत वापस आएगा,
लेकिन अब उसको उनको किस लिए लौटाया
उनकी
जाएगा
उम्र
पता
क्या
नहीं। नहीं
है,
जैसे कि ये भी
उम्र में बता दो,
बाज
लौट के
रिवायतों
जाएगा
में,
धीमे हो
बाज रिवायतों में ये भी है कि
जाएगा।
जैसे करबला दोबारा होगी और इस किस्म की चीजें, लेकिन अब उस डिटेल में जाने का
डिटेल
फायदा
नहीं
नहीं।
है
हाँ
मौजूद रजत में, खैर वो भी बुक्स मौजूद है रजत के मौजूद है, वो पढ़ सकते हैं।
चलिए, तो बहरहाल मैम उसको आगे बढ़ता हूँ। यहाँ तक बात क्लियर हो गई,
जी बिल्कुल
नूर का कंसेप्ट क्लियर हो गया, जिंदगी का हदफ समझ में आ गया, और अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? हिजाबात बरतरफ करने पड़ेंगे, आपकी इबादत, आपका हुसूल इल्म, आपकी मजलिस, आपका दर्स, अगर नफ्स पर पड़े हुए, कल्ब पर पड़े हुए पर्दों को चाक करने का सबब नहीं बनता तो वो कोई पर्पज सर्व नहीं कर रहा। ये बुनियादी नुकता है। आज मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा सूरह यूनुस की इब्तदाई आयतों के हवाले से इस चीज़ को ज़रा और वाज़े कर दूँ।
तो
इसी
हम उस पैटर्न पे नहीं चल रहे हैं,
अगली
तफसीर
दफ़ा
और
इंशाल्लाह,
सूरह बकरा
नहीं
या
नहीं
सूरह
अगली
अलक
दफ़ा
के
से
साथ।
इंशाल्लाह, अगली दफ़ा से।
अच्छा
यानी क्योंकि ये
ठीक है,
चीज़ें बेस बेस में जो है ना, ये कुछ बातें समझाना बहुत ज़रूरी है। जैसे लास्ट टाइम मैंने एम्फेसाइज किया था इस चीज़ पर कि रुकावट कौन सी चीज़ बनती है, अगर आपको याद हो कि खुदा ने हमें तमाम नेमतें दी, लेकिन हमारा मिसाल के तौर पर अजदाद की अंधी पैरवी करना, बुजुर्गों की अंधी तकलीद करना, बगैर इल्म के किताब की तरफ बढ़ना, ये सारी की सारी चीजें हमें सिर्फ और सिर्फ इस जगह तक पहुंचाती हैं कि हम दीन के नाम पर एक दूसरे से झगड़ा करते रहें, हासिल उसूल कुछ नहीं हो। ठीक है ना जी?
क्वेश्चन कि आपने ये कहा कि जितनी भी इबादत हैं ये इंसानी नफ्स के फर्जों को और जवाब को खत्म करने, ये इंसान को कैसे इल्म हो कि जवाब जो है वो वाकई में हट रहे हैं या
इसकी
वो
दो
वक्त
दो तीन बातें होती हैं, इसकी अलामतें। सबसे पहली बात यह है कि आपको जितने भी हकायक़े इलाहिया हैं वो सब बहुत बेहतर तरीके से समझ में आना शुरू हो जाएंगे। इसमें एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंसान के साथ होती है वो ये कि आप जो कुछ सोचें और उसकी कन्फर्मेशन आपको कौले मासूम और आयत कुरानी से मिले, तो आपको ये समझ में आता है कि अब मेरी जो फ्रीक्वेंसी है वो इस नूरानी फ्रीक्वेंसी से मैच होना शुरू हो गई है।
ये फ्रीक्वेंसी समझ में आने लगी और तब भी गलतियां करते जा रहे हैं,
वो तो रहेंगी, वो तो बहुत आगे तक रहेंगी।
इसका मतलब है कि आप ऊपर भी जा रहे हैं, बिल्कुल नीचे भी
नहीं, नीचे नहीं जा रहे, इसलिए कि गलतियों का 100% बरतरफ हो जाना तो बहुत आगे का मकाम है। यानी अगर इंसान 100% गलतियों और खताओं से पाक हो जाए तो वो तो मासूम हो जाएगा।
मासूम हो जाएगा,
ये रहेगा
लेकिन वो पोटेंशियल तो है ना, एक और से भी
वो,
पोटेंशियल।
हाँ, यानी कि वो चीज़ रहेगी लेकिन वो रफ्तार 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 कम होती चली जाती है। और यानी कि एक मौके पर, यानी कि इस इंसान की यह हालत हो जाती है कि इवन वो गलती का ख्याल भी करता है तो उसे फौरन महसूस हो जाता है कि मैं गलत तरफ जा रहा हूँ। पहले गलती करने के बाद महसूस होता है कि गलत किया। जब ज़्यादा तरक्की याफ्ता हो जाता है तो गलती का रुझान पैदा होता है और उसे लग जाता है कि कुछ हो रहा है, गड़बड़ हो रही है। ये सारे वो तरक्की के मराहल हैं जिससे पता चलता चला जाता है कि मैं, मेरे हिजाबात बरतरफ हो रहे हैं। और हिजाब बरतरफ होने की एक सबसे अहम जो अलामत है वो जिक्र खुदा की लज्जत और मिठास है। और बल्कि मैंने कुछ उलमा के किताबों में यहाँ तक पढ़ा है कि ये मिठास इतनी रियल होती है कि इस जबान पे भी आती है, यानी मादी जबान पे भी आ जाती है, अगरचे कि वो पैदा नफ्स में हो रही है, कल्ब में हो रही है वो हलावत, लेकिन उसका असर इतना शिद्दत इख्तियार कर जाता है कि इस जबान में भी वो कैफियत आ जाती है मिठास की। ये अलामत है इस बात की, क्योंकि नबियों से भी अम्मा से भी ये बात पूछी गई है, ये सवाल किया गया है कि नबी को कैसे पता चलता है कि ये नबी है, कि आप नबी हो गए, आप मुंतखब हो गए, या आप पे वही आ रही है। तो सब ने यही कहा कि खुदा कल्ब में एक ऐसी चीज पैदा कर देता है कि जो इस हवाले से हर शक को बरतरफ कर देती है। और इस पर यानी कि अभी जाहिर है कि फिर ये बात काफी ज्यादा गहराई वाली हो जाएगी, लेकिन इस एक जुमले को याद रखिएगा कि जितना भी सिस्टम है हिदायत का या गुमराही का, वो सब का सब मेरे और आपके अंदर पाया जाता है, बाहर कुछ भी नहीं है, बाहर कुछ भी नहीं है। तो जो इंसान अपने अंदर देखने के काबिल नहीं है, अपनी नफ्स की किताब पढ़ने के काबिल नहीं है, दरहकीकत वो सबसे बड़ा जाहिल और गाफिल है। बाहर नहीं है, इधर है। ये एक बहुत अहम नुक्ता है और इसकी वजाहत इंशाल्लाह आएगी आगे। और यही मैंने जो आपको बताया था रुश्त। तो बहरहाल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह यूनुस की इब्तदाई आयतें, अलिफ लाम रा तिल्क आयातुल किताबिल हकीम। अकान लिन्नास अजबन अन औहैना इला रजुलिन मिनहुम अन अनज़िरन्नास। अकान लिन्नास अजबा, मैं मतलब ज्यादा कोई वो नहीं करूँगा, लेकिन ये कि जो मेन जिस्ट है मैं चाह रहा हूँ वो आप तक पहुँच जाए। क्या इंसानों के लिए, अब यहाँ बात किसकी हो रही है, कुल इंसानियत की हो रही है, अजबा, क्या इंसानों के लिए ये चीज़ ताज्जुब का बायस बन गई, उनको हैरत में डालने का बायस बन गई? क्या चीज़? औहैना इला रजुलिम मिनहुम, कि हमने वही की उनमें से एक मर्द पे, रजुल मर्द, मिनहुम उनमें से, तो दूसरी मखलूक होना है, दैट आइडिया इज नॉट एक्सेप्टेड। अन औहैना, के बेशक के हमने वही की, वही हो रही है और यही चीज पैगंबर भी कह रहे हैं, कुल इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम यूहा इलैय, कि इसमें शक नहीं है कि मैं तुम्हारे मिसल बशर हूं, लेकिन फर्क यह है कि साहिब वही भी हूं। ये फर्क आप कहेंगे तो मान मान लिया जाएगा, लेकिन आप कहेंगे कि मखलूक ही कोई और है तो उसकी ताइद नहीं होती। कि क्या लोगों के लिए ना, कि ये यही चीज है कि आम इंसान जब इस मर्द को देखते हैं तो वो ताज्जुब का शिकार हो जाते हैं कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि कोई इंसान इस बात का दावा करे कि खुदा या मलक मुझसे हम कलाम होता है, खुदा का पैगाम मुझ पे आ रहा है। तो इंसानों के लिए वही किस चीज में उनको मुब्तला करने वाली है? ताज्जुब में, जैसे हम सब फिर ये सब बातें करना शुरू हो जाते हैं ताज्जुब का शिकार होने के बाद। अन अनज़िरिन नास, के वो वही किस लिए नाजिल हुई? कि इंसानों को डराओ। पहली चीज क्या है? डराओ, क्योंकि इंसानियत क्या है? गड़े में गिर रही है। इंसानियत कहाँ है? कुंतुम अला शफा हुफरतिम मिनन नार, इंसानियत एक ऐसे खंदक के किनारे पे खड़ी हुई है कि जिसके अंदर आग का अलाव रोशन है। तो नबी का पहला काम क्या है, जो साहिब वही का पहला काम क्या है? डराना, अनजर, इंसानों को डराओ। वबशर लजीना आमनू, ये आयत बहुत अजीब है कि क्या उमूमी इंसानों को, आम इंसानों को हैरत हुई इस बात पर कि एक साहिब वही, हामिले वही इंसान आके हमें डर सुना रहा है, लेकिन उसी शख्स के सामने कुछ दूसरे इंसान भी आ रहे हैं। वह बशरिल लजीन आमनु, और ये किताब जो है ये बशारत दे रही है उनको कि जो ईमान ले आए। ये ईमान लाने वाले वो हैं जो पैगंबर से कबल मोमिन है। किताब की नुजूल का मकसद बयान हो रहा है कि किताब आई, पैगंबर आए, उनको देखकर लोग ताज्जुब का शिकार हो गए कि ऐसा भी होता है, लेकिन वही किताब कुछ लोगों को खुशखबरी भी सुना रही है। तो अब जो ये ईमान वाले हैं, ये वो हैं कि जो उससे पहले मोमिन हैं,
बिल्कुल
कि जब
बिल्कुल
पैगंबर आए हैं तो आम इंसान उनको देख के हैरत और ताज्जुब के शिकार में मुब्तला हुए, और कुछ हैं जो उनका इस्तकबाल कर रहे हैं, कह रहे हैं हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे आपकी आमद को, उनको खुशखबरी सुनाओ। ये कौन से मोमिन है? ये वो हैं जो हिदायत फितरी से फायदा उठाए हैं। ईमान की पहली मंजिल क्या है? अपनी फितरत में मौजूद हिदायत को एक्सप्लोर करके हकायक को समझना। और यही वो लोग हैं जो दर हकीकत पैगंबर के पैगाम से भी फैज उठाते हैं और फायदा उठाते हैं। तो दूसरी किस्म इंसानों की, वह बशर लजीना आमनु, ईमान वालों को खुशखबरी दे दो, अन्न लहुम कदम सिद्क इंद रब्बिहिम, क्या खुशखबरी दे दो कि उनके लिए उनके रब के पास सच्चा मकाम मौजूद है, कदम सिद्क मौजूद है। यानी पैगंबर जब तुम मिलो इनसे, और सूरह अनआम की आयत भी यही है कि इजा जाअकल लजीना युमिनून बे आयातना, इस लफ्ज पर गौर कीजिएगा, इजा जाअकल लजीना, ए पैगंबर जब तेरे पास वो लोग आए, युमिनून बे आयातना, जो हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं,
पहले से करते
यानी कि ये जो जमीन और आसमान और सूरज और चांद और सितारे और ये जो कायनात खुदा ने बतौर आयत पैदा की, ये उस पर ईमान रखते हैं, हकायक इलाहिया पर ईमान रखते हैं। जब ये तेरे पास आए तो क्या, फकुल सलामुन अलैकुम, तो बस उनसे कहना कि तुम पर सलाम। और ये कुल, ये सलाम कौन कहलवा रहा है पैगंबर से? खुदा कहलवा रहा है। कतब रब्बुकुम अला नफ्सिहि रहमा, और उनसे सलामुन अलैकुम कहने के बाद ये पैगाम दे देना है कि तुम्हारे रब ने अपने नफ्स पर रहमत को लिख लिया है।
वाह
तो असल ईमान ये, यहां से ईमान शुरू होता है, युमेनूना बे आयातेना। तो ये किताब जब नाजिल हुई तो इंसानों को हैरत में मुब्तला कर रही है, किताब व पैगंबर, और कुछ ईमान वाले हैं कि जो उसका इस्तकबाल कर रहे हैं। ये कौन है? जो युमेनूना बे आयातेना है, कि जो खुदा की निशानियों को देखकर समझ रहे हैं कि खुदा को ऐसा काम करना चाहिए था, खुदा को पैगंबर और मासूम किताब भेजना चाहिए। जब हम इस जमीन और आसमान के पर्पस को फील कर रहे हैं तो हम मुंतजर हैं कि जिसने ये, जिसे हम कहते हैं ना कि एक जगह आपको ले जाके बिठा दिया गया, वहाँ बेहतरीन दस्तरखान सजा हुआ है और सारी चीज़ें लगी हुई हैं, तो आप दस्तरखान पर बैठ के किसी मेज़बान की आमद के मुंतजर होंगे ना, कि भाई घर वाले का भी तो कोई पैगाम आए। तो जो इस दस्तरखान इलाही को देख रहा है इस कायनात में, वो मुंतजर है किताब व पैगंबर का, कि जिसने ये सारी बिसात बिछाई है उसको पैगाम भी भेजना चाहिए, कुछ मैसेज भी भेजना चाहिए। तो उनको खुशखबरी दे दो कि तुम्हारे लिए तुम्हारे रब के पास कदम सिद्क है। قال الكافرون ان هذا لسحر مبين, और ये तीसरा गुरु है जो सीधा सीधा इनकारी है। आम इंसान ताज्जुब का शिकार हो रहे हैं, मोमिनीन यानी जो युमिनूना बे आयातेना पर की मंजिल पर फायज हैं, वो इस्तकबाल कर रहे हैं कि उन्हें अपने दिल की मांगी मुराद मिल गई, और कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं ये तो जादू खुला हुआ है, तुम्हें तो कुछ ही नहीं। ये कैटेगराइजेशन, ठीक है, बात समझ में आ रही। इन रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़, और फिर आया जिक्र हुआ खुदा की निशानियों का, कि आसमानों और ज़मीन को खल्क किया, उसके बाद खुदा अर्श पर हावी हुआ, ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, और यही है जो तुम्हारा अल्लाह, जो तुम्हारा रब है, फ़ाबुदू। तो जब समझ लिया कि अल्लाह है, और जब इस बात को समझ लिया कि अल्लाह ही रब है, तो बस अगला मरहला क्या है, फाबुदू, बस उसकी बंदगी करो। کہ یہ اللہ ہے جس نے سب کچھ خلق کیا، ہر شے کا معبود، مبدا معاد، وہی رب ہے، فاعبدوہ. اب یہ جملہ آیا افلا تذکرون، یہ بہت عجیب لفظ ہے کہ کیا نہیں پس تذکر کرتے. تذکر کا لفظ یہاں کیوں آ رہا ہے؟ تذکر مینس ریممبر، یاد کرنا، بھولی ہوئی چیز کو یاد دلانا، اس کو کہتے ہیں تذکر. یعنی پیغمبر انسان کو آ کر نئی بات نہیں بتا رہا، اس کی بھولی ہوئی چیز یاد دلا رہا ہے. یعنی کہ اگر انسان اپنی ہدایت فطری کو سلامت رکھے ہوئے ہوتے تو یہ سب باتیں انہیں خود سمجھ میں آ رہی ہوتی. پیغمبر اور کتاب اس لیے نہیں آئے کہ ان کو کوئی بالکل نئی چیز وہ حیران ہو کے دیکھیں گے آ رہی کیا بات ہو گئی. نہیں، جو کچھ تمہارے اندر ہے، جیسے تم بھول گئے ہو، وہ یاد دلایا جا رہا ہے. کیونکہ تذکر کس کے مقابلے میں؟ نسیان کے، فراموشی کے. کہ جس چیز کو تم نے فراموش کر دیا ہے اس کو یاد کرو. اور اس کو یاد دلانے کے لیے خدا نے یہ آیات آفاقی رکھی، یہ کائنات اور اس کا پورا نظام، اور اسی کو یاد دلانے کے لیے خدا نے یہ پیغمبر و کتاب کو نازل کیا. ہاں، یعنی کہ دیکھیے بات ساری کی ساری یہی ہے کہ جو حق ہے، جو سچ بات ہے، کہ ہمیں بہت ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کی ضرورت ہے. جو سچی بات ہے وہ یہ کہ ہم نے اپنی زندگی کا بہت وقت ضائع کر دیا، ہم غلط رستے پر بہت آگے تک نکل گئے ہیں. اب پتہ نہیں اگر اب بھی پلٹتے ہیں تو صراط مستقیم پر آ بھی پائیں گے یا نہیں اپنے لائف ٹائم میں. تو یہ چیز جو ہے نا، یعنی کہ اس چیز کو ہم جتنا جلدی سینس کر لیں، اس مسئلے کی سنگینی کو، اتنا بہتر ہے. اور ابھی یعنی کہ یہ آیتیں دیکھیں، میں نے اسی لیے ان کو منتخب کیا ہے کہ اس میں وہ ساری باتیں آ جاتی ہیں کہ ہماری پرابلمز کیا ہیں اور ہمیں کہاں جانا ہے اور کس طریقے سے جانا ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جو اللہ ہے وہی رب ہے، اور جب سمجھ لیا کہ اللہ ہے اور رب ہے، فاعبدو، اس کی بندگی کرو، اور تذکر، اس چیز کو یاد کرو اور یاد رکھو، فراموش نہ کرو اس حقیقت کو کبھی بھی. الیہ مرجعکم جمیعا، یہ امپورٹنٹ پوائنٹ، انسان کی رجعت، مرجعکم جمیعا. مرجع یعنی جس کی طرف لوٹا جائے، رجوع، لوٹنا، مرجع. جیسے ہم بھی اپنے عالم کو مرجع کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جب ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو ہم ان کی طرف لوٹتے ہیں. تو مرجعکم یعنی تم سب کا مرجع، لوٹنے کا مقام، جمیع، سب کے سب کا، تمام انسانوں کے، کافر، مشرک، کوئی بھی ہو، تم سب کے لوٹنے کا مقام کیا ہے؟ الیہ، اسی اللہ کی طرف. تو جیسے میں نے کہا کہ جنت یا جہنم وسط رائے، جنت جہنم منزل نہیں ہے، خدا منزل ہے. الیہ، اس کی طرف تم سب کے سب لوٹ کے جاؤ گے. اور جس کو علماء ہمارے بیان فرماتے ہیں کہ کافر خدا سے ملاقات کرے گا تو قہر خدا، یعنی خدا کی صفت قہاریت کو پائے گا، اور مومن جب خدا سے ملاقات کرے گا تو خدا کی صفات جمالیہ کو پائے گا. یعنی ملاقات سب خدا کی طرف کریں گے، رجوع، مرجع سب کا خدا ہی ہے، اللہ ہی ہے، لیکن بس فرق اس کا ہے کہ کون کس صفت کے ساتھ ملاقات کرتا ہے. کہ مومن کے لیے قہر اور غضب حجاب میں چلا جائے گا، جمال ظاہر ہو جائے گا، اور کافر اور مشرک کے لیے خدا کی جمال اور رحمت اور رحمانیت حجاب میں چلی جائے گی، اور یہ قہر و غضب سامنے آ جائے گا. लेकिन मर्जे रुजू लौटना पलटना मंजिल मकसद सबका एक ही, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये सबके लिए। अच्छा, मैं फिर थोड़ा सा आगे, इन्नल्लज़ीना, अब ये वो आयत है जो हमसे बहुत डायरेक्टली कनेक्ट होती है हमारी हालत से। इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग, ला यर्जूना लिकाअना, रिजा किसे कहते हैं, रिजा का मतलब होता है उम्मीद, होप। ला यर्जूना, जो उम्मीद नहीं रखते, किस चीज की उम्मीद नहीं रखते, लिका अना, हमारी मुलाकात की। तो इंसानियत का एंड क्या है, खुदा से मुलाकात। और ये एक दफा ये लफ्ज नहीं आया, बहुत दफा आया कुरान करीम में, मैं खाले 10 से ज्यादा मरतबा आया। इन्नल्लज़ीना ला यर्जूना लिका अना, तो मोमिन या मुस्लिम वो किस उम्मीद में जिंदगी गुजारता है, खुदा से मुलाकात की उम्मीद में। अब ये खुदा से मुलाकात की उम्मीद ये नहीं कि जिसकी तफसीर बाज लोगों ने कर दी कि आखिरत में अल्लाह की नेमतों का पाना खुदा से मुलाकात है, इस किस्म की बात नहीं है। बल्कि इसको हम ये नहीं बयान कर सकते कि इसकी कैफियत क्या होगी, लेकिन हम इसको कम अज़ कम इतना डिफाइन कर सकते हैं कि खुदा से मुलाकात का मतलब ये है के बंदे और अल्लाह के दरमियान हिजाबात इस हद तक हट जाएं कि बंदे को इस बात में जर्रा बराबर शक न रहे कि जिससे मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं और जिसके मैं ज़ेरे असर हूं वो मेरा रब और खुदा है। कम अज़ कम इतनी बात हमें समझ में आ सकती है, लेकिन कैफियत क्या होगी जाहिर है हम अभी उसको डिफाइन नहीं कर
ये वो
सकते।
वाली मुलाकात नहीं है कि अल्लाह कुर्सी पे बैठा होगा
हाँ, ये सब बातें जो है जी,
कुर्सी पे बैठा होगा
हाँ
वो इस लताउल्लाह से ही मिला रहा है ना, इस चीज को कहते हैं जो कुरान में कि खुदा से मुलाकात, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट ये नहीं,
बिल्कुल नहीं,
बिल्कुल नहीं।
ये नहीं कि इसमें इसमें कुछ रिवायतें एक आध ऐसी, जैसे इमाम रजा अलैहि सलाम की रिवायत बयान हुई के आपने फरमाया कि कयामत में पैगंबर अकरम को उनके मकाम महमूद पर देखना या उनसे मुलाकात करना, यानी, लेकिन वो भी एक मजाज है। लेकिन जो असल चीज क्या है, ला यर्जूना लिका आना जी, तो ये जो नूरानियत है जिसकी तरफ सारी इंसानियत को दावत दी जा रही है और जिस तक इंसानों को पहुंचाया जाएगा और जिसकी तरफ हर एक का रुजू और मर्जा है, वो क्या है कि हम में से हर एक, हर इंसान आखिर में अपने रब से, अपने माबूद से अकेले मुलाकात करेगा। ये भी सूरह मरियम की आखिरी आयतों में कि तुम हमारे पास आओगे तन्हा तन्हा, फर्द फर्द, अकेले अकेले, यानी खुदा से मुलाकात हर एक की अलहदा अलहदा होगी और फिर उसके बाद बातचीत होगी। तो ला यर्जूना लिकाअना, अब जो इस खुदा से मुलाकात की उम्मीद में नहीं है उसकी हालत क्या है, वरजू बिल हयात दुनिया वत्मअन्नु बिहा, जो अल्लाह से मुलाकात की उम्मीद नहीं रखते वो कौन लोग हैं, जो हयात दुनिया से राजी हो गए, वत्मअन्नु बिहा, और इसके वसीले से अपने इत्मीनान को तलाश करते हैं। कुरान करीम का जैसे मैंने बताया है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कुरान के अंदाज़ बयान का वो जनरलिटी है, समझ रहे हैं, यानी कुरान इस तरीके से बात नहीं करता कि फलां निजाती ग्रुप निजाती याफ्ता हो गया, फलां ग्रुप ये हो गए, ये नहीं है। निशानियां हैं, अलामतें हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, खसूसियात हैं, जिसमें भी पाई जाए, वो दुनिया में कहीं भी रहता हो, बज़ाहिर किसी दीन मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, इससे गरज नहीं है, ये खसूसियात से गरज है। ठीक है। और इसी तरीके से जैसे आले इमरान की आयतों में और उसमें है कि खुदा ने जाहिरी तौर से मुसलमानों की मजम्मत की है, लेकिन जो लोग ईसाई हैं उनकी तारीफ की है, जो बज़ाहिर ईसाई मज़हब पर हैं, जिनमें से एक बड़ी मिसाल नजाशी की और उन लोगों की, उनकी तारीफ की। तो ये नहीं है कि हम कहें मुसलमान हो गए, शिया हो गए, फला हो गए, फला हो गए, इसकी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं। किस मेयार पे परखना है? ये जो कुरान ने पूरी एक चेकलिस्ट दी है, इस पे परखना है। अपनी नूरानियत को देखना है कल्ब में कि नूरानियत कितनी है, वो क्राइटेरिया। तो जो दुनिया की जिंदगी से, मुझे वो तो नहीं दोहराना कि हयात दुनिया किसे कहते हैं, सही है ना, वो तो जहन में है ना, कि जो हयात दुनिया से राजी हो गए और बेहा वत्मअन्नु बेहा, बेहा बा जो है ये बाय सबबियत कहते हैं। सबबियत का मतलब है कि इसके सबब से, इसके वसीले से, बाय वर्चू ऑफ दिस, कि हयात दुनिया पर राजी हो गए और इसके वसीले से इत्मीनान ढूंढते हैं। जबकि मोमिन का इत्मीनान क्या है? अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, यानी कि जो लिकाए परवरदिगार की उम्मीद रखता है, जो मोमिन हकीकी है, उसका इत्मीनान है कल्ब जिक्र खुदा में। क्या आयतुल्ला जवादी अमली ने इसी इन्हीं आयतों की तफसीर में एक जुमला कहा कि इंसान या नेमते खुदा को देखने वाला हो या खुदा को देखने वाला हो हर नेमत के पीछे, तब पुरसुकून होता है। यानी नेमत को देखे, ये निचला दर्जा है कि नेमत को देखे लेकिन उसके साथ साथ खुदा को भी देखे कि अता को निंदा वो है, या नेमत डिजोल्व हो जाए और सिर्फ मुनइम नजर आए, जैसे आइम्मा की मिसाल, तब इत्मीनान और सुकून को पाता है। लेकिन उससे हटकर खाली नेमत को जब तक देखता रहता है, ये चीज उसको इज़्तिराब और परेशानी और मुसीबत से कभी बाहर नहीं निकलने देती। ये एक इंतहाई अहम जो आपने बात की ना, अल्लज़ीना ला यरजूना, इन्ना अल्लज़ीना ला यरजूना लिकाअना, जो हमारी मुलाकात की उम्मीद नहीं रखते। तो हमें अपनी जिंदगियां कैसी गुजारनी है? खुदा को हिसाब देना है बिल मुशाफा, खुदा से मुलाकात करके हिसाब देना है। यानी खुदा से एक वक्त आएगा कि जब उससे मुलाकात करेंगे, वो पूछेगा कि मैंने तुम्हें जिंदगी दी, तुमने क्या किया, कैसा गुजार किया है। सही है। और इसमें एक और भी जुमला जो बाज़ औक़ात उरफ़ा कहते हैं कि जब इंसान इस लिकाए परवरदिगार की मंजिल तक पहुंच जाएगा, यानी इतना रुश्त हासिल कर लेगा, तो उसे ये बात समझ में आएगी कि मैं कभी भी खुदा से जुदा नहीं था। यानी ऐसा नहीं है कि आज खुदा कहीं और है, कहीं छुपा हुआ है, और हम कहीं और हैं और खुदा कहीं और है। ये सिर्फ और सिर्फ हिजाब हटने की बात है। तो जो चाहे वो खुदा से मुलाकात इस वक्त भी कर सकता है, खुदा गायब नहीं है,
वो इशारे से करीब वाली
खुदा
बात
गायब नहीं है कि हम ये समझें खुदा भी कहीं और है, अर्श पर है, और हम चलते चलते चढ़ते चढ़ते पहुंचेंगे अर्श पे कभी तो फिर मिलेंगे, ये मतलब नहीं है इसका। लिकाए परवरदिगार हर वक्त मुमकिन है अगर हम मुतवज्जे हों, अगर हम आमादा और मुस्तैद हों। सही। ये तो हमारा मकसद क्या है पैदाइश का? नूरानी होना। हमारी जिंदगियों का, हमारे आमाल का मकसद क्या है? कि ऐसी जिंदगी गुजारी जाए कि जब खुदा से मुलाकात करें तो मुंह दिखाने के काबिल हो। अल्लाहुम्मा जअलनी इंदक वजीहन बिल हुसैन अलैहिस्सलाम, ज़ियारत आशूर का जुमला है। अल्लाहुम्मा जअलनी इंदक वजीहन, ए अल्लाह मुझे करार दे अपनी बारगाह में वजीह। वजह का मतलब मैंने आपको बताया था, जहत और चेहरा, कि मुझे अपनी बारगाह में ऐसा बना कि मैं तुझे चेहरा दिखाने के काबिल हूँ। बिल हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन के वसीले से, یعنی امام حسین سے میرا تعلق میری نورانیت کا وہ سبب بنے، وہ وسیلہ قرار پائے کہ میں جب تیری بارگاہ میں آؤں تو تجھے اپنا چہرہ دکھانے کے قابل ہوں. یہ مقصد حیات ہے جو ہمیں قرآن اور اہل بیت سے سمجھ میں آتا ہے. لقاء پروردگار کی امید ہمیشہ رہے اور اس بنیاد پہ تیاری ہو. اور یہ کہ اصل ہدف کیا ہے کہ خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے، پوری انسانیت کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ نورانی ہو جائیں، ظلمات سے باہر آئیں اور نورانی یعنی صفات الہیہ ان کے اندر روشن ہو جائیں. اور جو ایسا نہیں ہے اس کی علامت کیا ہے؟ رضو بالحیات الدنیا، کہ وہ حیات دنیا سے راضی ہے، یعنی لہو و لعب اور زینت و تفاخر و تکاثر سے راضی ہے. وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور اسی کے ذریعے سے اپنا اطمینان تلاش کرتا ہے اور ڈھونڈتا ہے. تو اب یہ دو پیمانے ہمارے سامنے آ گئے، اب اس پہ پرکھ کے دیکھ لیں کہ ہم کس سائڈ پر ہیں، ایگزسٹ کرتے ہیں. نہیں، میں اگر بورڈ ہوتا نا، میں بورڈ ہوتا نا تو میں آپ کو ایک چیز، نہیں میں میں ایک میں نہیں نہیں میں ایک چیز اسی لیے بورڈ کا مجھے اس لیے یاد آیا کہ جو انسان کا سفر ہے نا وہ ورٹیکل پلین میں، ہوریزونٹل پلین میں نہیں ہے.
اوپر سے نیچے،
صحیح ہے، یعنی کہ میں یوں اور یا یوں ہو رہا ہوں. اب اگر کوئی چیز ورٹیکل پلین میں ہے تو اسے اوپر جانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اور اگر ایون اس نے اپنے آپ کو چھوڑ دیا تو خود بخود نیچے آ جائے گا.
یہ ممکن ہے کہ وہ نیچے سے اوپر جا رہا ہو لیکن بعض دفعہ اوپر سے نیچے بھی آ جائے؟
وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ اب جو چیز جو اس طریقے سے ہے کہ اگر آپ اپنے کو چھوڑ بھی دیں تو آپ خود ہی نیچے آ جائیں گے. تو ہمیں مسلسل محنت کرتے رہنا ہے، جی مسلسل محنت کرتے رہنا ہے اوپر جانے کے لیے. نہیں بیچ، بیچ جو ہے، نہیں بیچ جو ہے نا، اگر بیچ سے مطلب آپ کی ٹرانزیشن ہے تو وہ ہے. بیچ بیچ سے مطلب نہیں، بیچ سے اگر بیچ سے مطلب آپ کا کوئی اسٹیشن ہے تو وہ نہیں ہے. اسٹیشن نہیں ہے، ٹرانزیشن ہے.
ہاں
بالکل،
میں نے کہا کہ کوئی کیفیت ایسی بھی ہے کہ جو
اس کو
طرف بھی نہیں ہے اور اس طرف
نہیں. نہیں اس کو وہ جو آیت الکرسی کا ہے نا تیسرا، وہ بہترین سمجھاتا ہے اسی نظریے کو. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. اچھا اب یہاں پہ غور کیجئے، مومن کے لیے بھی ظلمت اور نور ہے اور کافر کے لیے بھی ظلمت و نور ہے،
لیکن اپوزٹ ہے، وہ ادھر سے ادھر جا رہا ہے.
صحیح ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن بھی جب تک کامل نہیں ہوتا اس کی پچھلی اسٹیج اگلے کے مقابلے میں ظلمت ہے. یعنی نیچے والی جب نیچے سے اوپر چلا گیا تو نور سے قریب ہو گیا، ظلمت سے دور ہو گیا. تو یہ ظلمات اور نور ریلیٹو ہیں، یعنی کہ ہر اوپر والا درجہ نچلے والے درجے کے اور ہر نچلے والا درجہ اوپر کے مقابلے میں ظلمات ہے.
کیا یہ ممکن ہے کہ ٹرانزیشن میں کوئی پھنس جائے؟
نہیں پھنسے گا تو کہیں بھی نہیں، پھنسے گا نہیں، وہ پھر نیچے آئے گا.
نہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ مطلب اس یا وہ ٹرانزیشن اس کا پرولونگ ہو جائے.
بالکل ہو سکتا ہے، ہر چیز پاسبل ہے.
وہ چیز وہ کیفیت لمبی ہو جائے.
یعنی آپ لوگوں کو میں نے بہت شروع میں سنایا تھا، بالکل شروع میں، اس وقت شاید بہت تھوڑے سے لوگ تھے، بلعم بن باور کا قصہ، سورہ آراف میں 175،
نبی کے مقابلے پہ جو
کہ یعنی کہ جس شخص کے بارے میں خدا نے یہ کہا کہ ہم نے اسے اپنی آیتیں عطا کی اور اس کے باوجود وہ اس جگہ تک پہنچ گیا. تو ہر چیز پاسبل ہے، یعنی جب تک انسان حرم امن الہی میں نہ پہنچ جائے ہر چیز پاسبل ہے. یعنی کہ جب آپ اس قلعے میں پہنچ جائیں کہ جس کے بعد خدا کہے کہ اب تم محفوظ ہو، پھر सही, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्नल हज़न, कि उस वक्त जाके मोमिन कहेगा जन्नत में पहुंचने के बाद कि तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझसे रंज को दूर कर दिया, उससे पहले रंज नहीं दूर होता। उससे पहले हम सब जो हैं वो इस हालत जंग में, उससे हम सब मुस्तकिल हालत जिहाद में जब तक वहां नहीं पहुंच जाते। और अगर हम खास तौर से पैगंबर अकरम के कुछ जुमलों को देखें तो इंसान ताज्जुब का शिकार हो जाता है कि हुजूर ये फरमाते हैं कि मुझे इस बात की भी उम्मीद नहीं है कि ये पलक जो ऊपर उठी है ये वापस भी आ पाएगी या नहीं। और जनाब सैयदा फरमाती हैं कि पैगंबर अकरम की जो अंगुश्तरी थी, अंगूठी, उसका नक्श था कि इलाही बिरहमते का अस्तगीसो या हय्यो या कय्यूम बिरहमते का अस्तगीसो फअग़िथनी या हय्यो या कय्यूम, ए वो जो हय है और कय्यूम है, ये दोनों आसमा बहुत बहुत समझने वाले हैं कि इंसान किसकी तरफ रुजू करे जो असल जिंदगी है, इंसान किसकी तरफ रुजू करे कि जिसकी वजह से हर चीज कायम है, जो हर शय को कायम करने वाला है, जितना कयाम है वो सब का सब जिसकी वजह से। या हय्यो या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीसो, तेरी रहमत से इस्तगासा करता हूँ। अच्छा, इस्तगासा के माने हैं हालत इज़्तिरार में पुकारना। गौस कहते हैं उसे जो आप जब मुज़्तर हो जाएं, बेइंतहा परेशान होकर पुकारें, उस वक्त जो आपकी मदद करे वो गौस है। जैसे ये लकब है इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का, या गौसल मुमिनीन, यानी या हय्यो या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीसो, तेरी रहमत के वसीले से अपनी हालत इज़्तिरार में पनाह चाहता हूँ। फअग़िथनी, बस मेरी मदद फरमा। इलाही ला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐनिन अबदा, ए अल्लाह एक आँख के पलक झपकने के वक्फे के बराबर भी मुझे मेरे नफ्स के हवाले ना करना। ये सब हुजूर की दुआएं जो आप नमाज, हर नमाज के बाद और रोजाना पढ़ा करते थे। तो जो बामारिफत है वो इस चीज को देख रहा है, यानी मामले की संगीनी को महसूस कर रहा है कि अगर जैसे है ना कि खुदा ना खास्ता हमें पता चले बाहर जंग छिड़ गई, फसाद हो गया, तो हमारी हालत एकदम तब्दील हो जाएगी। यानी हम जितने सुकून से बैठे हुए, आराम से बैठे हुए, सब सुकून रुखसत हो जाएगा, भागेंगे दौड़ेंगे, अच्छे बच्चे बाहर हैं, बेगम बाहर हैं, फला ये इनको लाओ उनको लाओ ये करो। तो जब मामूली यानी कि इस जिंदगी के हवाले से देखें फौरन हालत, लेकिन हम इसको नहीं समझ रहे कि आगे क्या खतरात हैं, क्या मसाइल दरपेश हैं, किस तरफ जा रहे हैं, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या खुदा ना खास्ता कब्र कैदखाना बन जाए तो कितना मुश्किल होगा उससे निकलना। इन सब बातों का बिल्कुल एहसास नहीं कर रहे हैं।
यकीन को पैदा करने के लिए क्या किया जाए?
जी, यही मेहनत है सारी। यानी कि पहली तो मारिफत है, कि पहली चीज सही मारिफत है, फिर उस पर मेहनत है, दुआ है, मांगना है, तलब है,
फिर वो यकीन पैदा होगा।
हुम वल्लजीना हुम अन आयातना गाफिलून, इंसानियत का असल मर्ज क्या है? गफलत। कि ये लोग, अब ये उनकी और अलामत के जो दुनिया की जिंदगी से राजी हैं उसमें इत्मीनान तलाश करते हैं, ये वो लोग हैं कि जो हमारी आयतों से गाफिल हैं। गाफिल की तारीफ क्या है? गाफिल की तारीफ ये है कि जो सामने पड़ा हो और उसको ना देखे, यानी गाफिल की तारीफ है अदम तवज्जो। कहने के मैं अगर यहां से उठूं और इस ग्लास से टकरा जाऊं तो ये गफलत है। तो ये कि जो चीज सामने पड़ी है उसकी और मेरे दरमियान कोई हिजाब नहीं है, पर्दा नहीं है, इसलिए इसका गाफिल का जो सही, अगर आप अंग्रेजी में पैरेलल वर्ड देखें तो इग्नोरेंस है, वल्लज़ीना हुम अन आयातना गाफिलून। यह है इंसानियत का असल मर्ज। गफलत किस चीज को पैदा करती है? नसियान को। गफलत की वजह से भूल, यानी कि जो चीज याद है वो हम भूल जाते हैं, और नसियान सबब बनता है कि इंसान शैतान के फैलाए हुए जाल में फंसे और उसका शिकार हो जाए। जी 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 अच्छा हाँ, अब यानी कि मेरा ख्याल है कि ये यहाँ तक मैंने पहले, एक मिनट जरा सा इसको, यानी आप लोगों ने इस चीज को समझ लिया, यानी बुनियादी तौर से ये कि असल में हमारा सफर जो है वो नूर का सफर है। नूरानी होने के लिए हिजाबात का बरतरफ होना जरूरी है। सबसे बड़े बड़े हिजाबात क्या हैं? इंसान का गाफिल होना, इंसान का लाइल्म होना, इंसान का हिदायत करने वाले से मुंह मोड़ लेना, और अपने आबाओ अजदाद की या बुजुर्गों की या माशरे के बड़े लोगों की बगैर समझे बूझे तकलीद करना। ये सबसे बड़े बड़े हिजाबात हैं। और यानी कि उसमें आप इजाफा कर लीजिए कि दुनिया की जिंदगी से जो आज हमने पढ़ा कि राजी होना और उसमें इत्मीनान तलाश करना, ये चीज इंसान को गाफिल बना देती है आयात इलाहिया से। यानी खुदा की निशानियां बिखरी पड़ी हैं, सनुरीहिम आयातना फिल आफाक व फी अनफुसिहिम, कि पूरी कायनात में भी आयात खुदा हैं, मेरे अपने नफूस में भी आयात खुदा हैं, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आता। ठीक है, ये गफलत सबब बनती है नसियान का, और नसियान सबब बनता है कि खुदा की रहमत उससे हट जाए और शैतान उस पर उसका वली बन जाए, खुदा की विलायत हट जाए और विलायत तागूत और शैतान उस पर हुक्मरान हो जाए। तो जो मेहनत है वो पर्पस को सामने रखते हुए, लिकाए परवरदिगार और नूरानियत, कि जन्नत जहन्नम मकसद नहीं है, लिकाए खुदा और मेरे वजूद का नूरानी होना ये असल मकसद है। इसको मद्देनजर रखते हुए अपनी जिंदगी को पूरा प्लान करें, उसको इस्तवार करें, इस लिहाज से आगे बढ़ें, इस लिहाज से इल्म हासिल करें, इसको मद्देनजर रखते हुए इबादत करें। पैरामीटर्स आपको बताए जा चुके हैं कि जिन पर आपको अपने को परखना है, सही, यानी यहां तक हमारी बात पहुंची। तो अब इसके बाद हम इंशाल्लाह तफसीर का आगाज करेंगे, लेकिन इस चीज का समझना जरूरी है कि अगर हमें कुरान समझ में नहीं आता तो वो मेरे हिजाबात की वजह से समझ में नहीं आता, ना कि उसकी वजह अरबी है और ये है और वो है। कि कुरान नूर है, नूर से मेरा कल्ब मुतासिर क्यों नहीं हो पाता? इसलिए कि बीच में पर्दे हैं। तो ये लैंग्वेज और ये और वो, ये सब चीजें नहीं है, ये कुछ भी नहीं, ये तो खामोखा के बहाने। तो इसका समझना जरूरी है कबल इसके कि हम कुरान से करीब हों या कुरान के मतालिब और मारिफ को समझने का आगाज करें। जी अब जो सवाल करना चाहें। जी 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 खोले, बिस्मिल्लाह जी के मुताबिक।